नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति निष्ठकी। ग्रंथाश्रम भागवतम स्कंध एक अध्याय दो श्लोक क्रमांक है 11। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवमश्च श्रीरूपं सग्रजातम् सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर दारुण बिंब फल दरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्व अहम न जाने प्रचोदिता जे न पुरा सरस्वती वितन्वता च ससतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुर्भूत्किलास्यत समेरिषीणा ऋषभ प्रसीदता भूर्तेर्महतभी ययिमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमूष पूरुष भुङ्क्तेर्गुणानशो दशषोडशात्मक सोलङ्कश्रेष्ट भगवान् वचांसि मे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति बुधवार इस भागवत सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रति बुधवार को श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवत कथा भगवान की विशुद्ध लीला का ग्रंथ है और भगवान की कथा यदि सुना जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा कलिपन नग भरनी, राम कथा कलिपन नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहुअरनी। भगवान की कथा कलि रूपी सर्प के लिए भरनी के समान है। प्राय हमारे वेद और शास्त्रों में कलयुग और कलयुग के प्रभाव को सर्प के साथ तुलना किया गया है, तो कलयुग और कलयुग के प्रभाव रूपी सर्प को मारने के लिए भगवान की कथा भरणी के समान है। आप पूछ सकते हो भरणी का अर्थ क्या होता है? भरणी के कई सारे अर्थ होते हैं, परंतु भरणी का एक अर्थ है भरणी नाम का एक पक्षी होता है और यह पक्षी चूहे के समान सिकुड़कर किसी कोने में बैठ जाता है। सांप का आहार होता है चूहा। सांप इस चूहे को खाने के लिए तुरंत अपना मुंह खोलता है और उस भरणी नाम के पक्षी को निगल जाता है, परंतु जैसे ही यह भरणी पक्षी को सांप निगल जाता है, यह भरणी पक्षी सांप के पेट में जाकर अपनी पंख को फैलाता है और उसके पंख के ऊपर कई सारे नोकेले कांटे होते हैं और उस कांटे के द्वारा सांप के पेट को फाड़कर यह बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार यह भरणी सांप को नष्ट कर देता है, मार देता है। भरणी का एक अर्थ होता है मोर, मयूर। मयूर को भी भरणी कहा जाता है। तो मोर का स्वाभाविक आहार सर्प होता है। जैसे ही मोर सर्प को देखता है वे तुरंत उसे गप करके खा लेता है। और भरणी का तीसरा अर्थ है भरणी नक्षत्र होता है। जैसे रोहिणी नक्षत्र है वैसे भरणी भी एक नक्षत्र है, और इस भरणी नक्षत्र में बादल से जो बारिश गिरती है उस बारिश को यदि बारिश की बूंद को यदि सांप पी ले तो इस भरणी नक्षत्र की बारिश की बूंद से सांप की तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो यह भरणी सर्प को मारने के सर्प को तुरंत मार सकती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की कथा कली रूपी सांप को मारने के लिए भरणी के समान है। यदि कोई भगवान की कथा सुनता है तो जैसे भरणी सांप को मार देता है वैसे कलयुग के प्रभाव को यह कथा मार देती है। और इतना ही नहीं, अविवेक कम बुद्धि वाले लोगों के लिए ये अरणी के समान है। अरणी का अर्थ होता है सूर्य। स्कंद पुराण में सूर्य के 70 नाम गिनाए गए हैं, उनमें से एक नाम है अरणी। तो जैसे 12 घंटे का रात का अंधकार होता है और यह रात का अंधकार तभी नष्ट हो सकता है जब सूर्य देवता प्रकट हो। रात के अंधेरे को कितना भी घी लगाकर दिया लगाया जाए, कितना भी बैटरी टॉर्च शुरू किया जाए, नाना प्रकार की आग लगाई जाए, फिर भी रात का अंधेरा दूर नहीं हो सकता है जब तक सूर्य प्रकट न हो। ठीक उसी प्रकार हमारे हृदय में हजारों हजारों जन्मों से अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, और यह अज्ञान रूपी अंधकार तब तक नष्ट नहीं होगा जब तक भगवान की कथा नहीं सुनी जाएगी। तो भगवान की कथा अरणी के समान है जो तुरंत ज्ञान को प्रज्वलित कर देती है। तो इस प्रकार कथा की बहुत महिमा है, और यह महिमावान कथा प्रति बुधवार को ऐसी भक्तिवेदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हमें यहाँ पर प्राप्त हो रही है। तो हम इस कथा के दौरान श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 11वें श्लोक पर पहुंचे हैं। बहुत ही सुंदर नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों ने प्रश्न पूछा है, और इस प्रश्न के उत्तर में सूत गोस्वामी बहुत ही सुंदर सुंदर उत्तर दे रहे हैं। पिछले बुधवार को आप लोगों ने सुना, सूत गोस्वामी ने कहा कामस्य नैन्द्री प्रीति लाभो जीवे तयावता। जीवन में जो काम प्राप्त होता है वह काम केवल जीवन जीने के लिए है। भोजन इत्यादि जीवन को चलाने के लिए है। तब 88,000 मुनियों का प्रश्न हुआ कि हे सुत गोस्वामी, जीवन क्यों जीना चाहिए? भगवान ने यह जीवन क्यों प्रदान किया है? इसका कुछ कारण होगा। मान लीजिए आप लोगों को पूछा जाए कि आपको यह मनुष्य जीवन क्यों मिला है, तो आप क्या उत्तर देंगे? 88,000 ऋषि मुनि सुत गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे हैं कि यह जीवन क्यों मिला है, तो आप में से कौन बता सकता है यह जीवन क्यों मिला है? गुलाब प्रभु बताइए। भक्ति। बहुत अच्छा आंसर है। पृथ्वी पर भोग करने के लिए जीवन मिला है। जिज्ञासा। अरे हरि बोल। सूत गोस्वामी उत्तर देते हैं कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा, या जीवन मिला है तत्व की जिज्ञासा करने के लिए। खास करके यह मनुष्य जीवन मिला है जिज्ञासा करने के लिए। हमने कहा था मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि कोई जिज्ञासा नहीं करता है तो प्रायः वह पशु के समान है। तो परम तत्व के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। तो अब 88,000 ऋषि मुनि प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रभु, आपने बता दिया कि जीवन का सबसे बड़ा लाभ है परम तत्व के बारे में जिज्ञासा करना, तो अब हमें यह बताइए कि परम तत्व कौन है। सभी तत्वों के मूल तत्व परम तत्व कौन है, कृपया करके आप हमें बताइए। तो परम तत्व का अर्थ होता है भगवान। तो सुध गोस्वामी को पूछा जा रहा है कि भगवान कौन है, कृपया करके आप हमें बताइए। तो मान लीजिए आप लोगों को पूछा जाए कि भगवान कौन है और कैसे है, तो आप क्या उत्तर देंगे इसका? कोई नहीं जानते हाँ? कैसे है, उनका रूप कैसा है? और कोई कौन बोले? हाँ हाँ, सच्चित आनंद। और बोला प्रभु, भगवान का रूप क्या है? यहां पर उस तत्व के रूप की चर्चा होगी। भगवान दिखने में कैसे हैं? जैसे प्रभु जी ने कहा निराकार, और ये प्रभु जी कह रहे हैं श्याम रंग के हैं। तो भगवान कैसे है और कौन है, कोई बता सकते हैं? यद्यपि यह श्लोक में उत्तर दिया गया है, जब मैं व्याख्या करूंगा तब आपको पता चलेगा। हाँ बोलिए। भगवान अनेक रूप में है, अच्छी बात है। और कौन? परमात्मा के रूप में है। और एक प्रभु जी ने कहा भगवान श्याम रंग के हैं, एक प्रभु जी ने कहा कि भगवान निराकार है, और एक प्रभु जी कह रहे हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में। ये तीनों में से सच क्या है आपको, इसमें से कौन बता सकता है? चलो तीन ऑप्शन आपको मिले, निराकार, एक आकार है, एक निराकार है, और एक परमात्मा के रूप में। तो तीन में से भगवान कौन है? उत्तर नहीं दे पाएंगे परमात्मा। यही जिज्ञासा करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। जीवन का 25 साल बीत गया, लेकिन यह जिज्ञासा नहीं की, और बहुत जिज्ञासा की कि कहाँ घूमने जाना चाहिए, भोजन कहाँ अच्छा मिलेगा, कौन सी सब्जी अच्छी है, कौन सी गाड़ी अच्छी है, ये जिज्ञासा बहुत बहुत कर ली। परंतु जिस जिज्ञासा को करने के लिए यह मनुष्य जीवन मिला है, मैं नहीं कह रहा हूं, सुध गोस्वामी कह रहे हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा, यह जीवन मिला है तत्व की जिज्ञासा करने के लिए। उस तत्व के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, और सब दुनिया का कचरा सब कुछ पता है। शेयर बाजार बहुत डाउन हो गया, बहुत मंदी आ गई, ये सब कुछ पता है। हालांकि वह करने के लिए जीवन नहीं मिला है। जो नहीं जानना चाहिए उसके बारे में सब लोग बहुत जानते हैं, और जिसके बारे में जानने के लिए जीवन मिला है उसके बारे में कोई नहीं जानता। पूछा जाता है तो कुछ लोग बोलते हैं, 100% में से 10% ही बोले, और जो बोले उसमें से कुछ लोग सही और गलत निकले। तो ये बहुत बड़ी कमी है। यह जीवन मिला है परम तत्व भगवान के बारे में जानने के लिए। तो आइए, सुध गोस्वामी कहते हैं कि वदन्ति तत्त्व विदह तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम। वह परम तत्व कौन है? वह परम तत्व कहते हैं कि अद्वयम सत चित आनंद घन जो है वह परम तत्व है। परम तत्व का स्वरूप के रूप कैसा है? तो कहते हैं सत चित आनंद घन स्वरूप। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे बजेंद्र नंदन। परम तत्व बजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ही परम तत्व है, जिसके बारे में जानने के लिए यह मनुष्य जीवन मिला है। लेकिन उस परम तत्व को और समझने के लिए, उनका साक्षात्कार करने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। वैसे देखा जाए तो परम तत्व एक ही है, वो है भगवान श्री कृष्ण। परंतु उस कृष्ण को सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार साक्षात्कार करते हैं। जैसे तीन जन का साक्षात्कार यहां पर हम लोगों ने देखा। एक जन कहते हैं कि परम तत्व है परंतु वे निराकार है। एक जन कह रहे हैं परम तत्व है परंतु उसका आकार है और सांवले रंग के हैं। और एक जन कह रहे हैं परम तत्व है परंतु वे परमात्मा के रूप में। तो ये अपना अपना साक्षात्कार है। वास्तव में ये तीनों जवाब बिल्कुल सही है, परंतु किस प्रकार से सही है यह हमें जानना चाहिए। यहां पर बहुत ही सुंदर शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं कि परम तत्व तीन रूप में है। श्रीपाद जीव गोस्वामी इनकी टीका में बहुत ही सुंदर दृष्टांत देते हैं। मान लीजिए बहुत दूर एक पहाड़ है। जब मैं सुन रहा था तो हमारे घर से बहुत दूर पहाड़ दिखता है, तो मैं यह अनुभव की हुई यह बात है। एक पहाड़ बहुत दूर है, तो दूर से वो पहाड़ दिखता नहीं है, दूर से वो पहाड़ एक बादल के समान दिखता है। बादल और पहाड़ दोनों साथ में, बादल ही दिखता है, दूर से पहाड़ की अनुभूति नहीं होती है। परंतु उस पहाड़ के, उस पर्वत के नजदीक जब जाया जाए तो लगता है कि यहां पर पहाड़ है। और जब नजदीक उस पहाड़ के जाया जाए, उस पहाड़ के ऊपर जब चले जाते हैं तो पता चलता है कि अरे पहाड़, इस पहाड़ पे तो बहुत ही सुंदर नदी है, नाले हैं, बहुत सुंदर पेड़ पौधे फल लगे हुए हैं। तो इस पहाड़ को तीन व्यक्ति ने देखा। जो दूर से देखा वो अनुभव करता है कि बिल्कुल निराकार है। दूर से देखने वाले को लगा कि कोई आकार नहीं है, बिल्कुल बादल के समान केवल एक हवा है। परंतु एक व्यक्ति नजदीक गया तो उसे दिखा कि नहीं, इसका आकार है। परंतु और नजदीक जाने वाले व्यक्ति ने देखा कि ये तो आकार भी है और आकार में भी इनमें कई कई वस्तुएं भी हैं। तो इस प्रकार से एक ही पहाड़ है परंतु इनका अनुभव तीन व्यक्ति अलग अलग ढंग से अपनी बुद्धि के अनुसार करते हैं। ठीक उसी प्रकार परम तत्व भगवान श्री कृष्ण ही है, परंतु उस कृष्ण का साक्षात्कार अपने अपने अनुसार लोग करते हैं। जो कृष्ण से बहुत दूर है वे कृष्ण को निराकार ब्रह्म मानते हैं। कृष्ण के जो नजदीक, थोड़े नजदीक पहुंचे हैं वे कृष्ण को परमात्मा के रूप में देखते हैं। अब नजदीक जाने का अर्थ मैं स्थल की बात नहीं कर रहा हूं, ज्ञान से जो नजदीक है, कृष्ण से ज्ञान से जो बहुत दूर है वे कृष्ण को निराकार मानते हैं। जो ज्ञान प्राप्त करके कृष्ण के नजदीक आ गए हैं वो कृष्ण को परमात्मा के रूप में मानते हैं, जो सभी के हृदय में। और जो वास्तविक शुद्ध पूर्ण ज्ञान जिसके पास है वो जानते हैं कि कृष्ण परमात्मा के रूप में भी हैं, ब्रह्म के रूप में भी हैं, परंतु उनके साथ साथ कृष्ण का एक सुंदर स्वरूप भी है और वह स्वरूप सच्चित आनंद घन है, जिसका कभी नाश नहीं है, नित्य आनंद में रहने वाला है। तो इस प्रकार से परम सत्य का यह तीन साक्षात्कार है। परंतु अब हमें यह भी जानना होगा कि परम सत्य का, भगवान के यह तीन साक्षात्कार में सबसे बेस्ट, सबसे ऊपरी साक्षात्कार कौन सा है। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, अब आप समझिए कि सबसे क्लियर और साफ साक्षात्कार क्या है। एक गांव था, बिल्कुल देहाती गांव था, उसमें बिजली लाइट कुछ नहीं थी। तो जैसे लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने हैं तो उन्होंने उस गांव के, गांव में नहीं परंतु गांव के 50 किलोमीटर दूर रेलवे की पटरी डाली, रेलवे शुरू करने के लिए। तो उस गांव के 50 किलोमीटर दूर रेलवे की पटरी डाली गई और बहुत ही सुंदर रेल व्यवस्था शुरू होने जा रही थी। तो गांव के सभी लोगों ने मीटिंग की कि सुना है इस गांव से 50 किलोमीटर दूर रेल शुरू हो रही है कल, तब हम सबको देखना चाहे कि वे रेल होती कैसी है। वास्तव में जब गांव में रहने वाले लोगों ने, ये सही बात है, हमारे बुजुर्गों ने जब सुना कि इस प्रकार से रेलगाड़ी होती है, ट्रेन होती है, तो वे भी अब जो वस्तु कभी देखी नहीं है उसको क्या कल्पना, क्या अनुभव करेंगे। तो सभी गांव वालों ने सोचा कि हम सबको यह जानना है कि यह रेल होती कैसी है, ट्रेन कैसी होती है। तो सब तो 50 किलोमीटर दूर जा नहीं सकते हैं, इसलिए सभी गांव वालों ने मीटिंग करके तीन लोगों को चुना और तीन लोगों को कहा कि कल सुबह तुम जाओ और देख कर आओ, क्योंकि कल सुबह ओपनिंग था उस रेल का, तो तुम तीनों जाओ और उस रेल को देख कर आओ, फिर हमें बताना कि वह रेल कैसी होती है। मीटिंग खत्म हुई, रात हो गई और ये तीन जन रात को सोए नहीं है रेल देखने के लिए। तो एक जन तो बहुत जल्द उठकर उसने सोचा कि सबसे पहले मैं देख कर आऊंगा और मैं खबर दूंगा। तो भोर में बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे उठकर वे दौड़ा, 50 किलोमीटर दौड़कर जब उस रेल के पास पहुंचा तो रेल आ रही थी, बिल्कुल अंधेरा था। अंधेरा था इसलिए रेल में जो आगे लाइट होती है वह लाइट शुरू थी। तो उस व्यक्ति ने दौड़ते हुए देखा, अरे बाप रे बाप, रेल को मैंने देख लिया, रेल कैसी है, रेल एक प्रकाश है। दूर से देखा कि एक प्रकाश है, प्रकाश को देखा और दौड़कर तुरंत वापस गांव में आ गया और गांव में आकर सब लोगों को कहा, रेल कैसी है, कैसी है, रेल एक प्रकाश, एक ज्योति है। अब दूसरा व्यक्ति दौड़ा उस रेल को देखने के लिए और जब ये दौड़ा तो थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया था और दूर से देखा कि रेल आ रही है। उसने देखा रेल केवल प्रकाश नहीं है, उसका आकार भी है, डिब्बे लगे हुए हैं। तो देख लिया कि प्रकाश नहीं है, उसका आकार भी है। जैसे उन्होंने दूर से आकार देखा तुरंत वे वापस गांव में आया और गांव में आकर सब लोगों को कहा कि रेल केवल प्रकाश नहीं है, निराकार नहीं है, उसका आकार भी है। और तीसरा व्यक्ति दौड़ा, तब तो पूरा उजाला हो चुका था और तीसरा व्यक्ति दौड़कर उस रेल को देखा, रेल को देखकर प्लेटफॉर्म के ऊपर गया, प्लेटफॉर्म पर जाकर रेल के अंदर जाकर उस डिब्बे को देखा, सीट को देखा, पंखे को देखा, ये सब कुछ देखकर गांव में आया और गांव वालों को बताया कि रेल केवल प्रकाश नहीं है, रेल केवल स्वरूप ही नहीं है, रेल तो बहुत बड़े बड़े डिब्बे लगे होते हैं, उसमें इंजन भी है, उसमें सीट भी है, उसमें पंखे भी लगे हुए हैं। तो ये तीन लोगों ने रेल का, ट्रेन का साक्षात्कार किया। इस तीन लोगों में पूर्ण साक्षात्कार किसका माना जाएगा, बताइए। तीसरा व्यक्ति, देखिए छोटी सी बालिका कह रही है कि तीसरे का साक्षात्कार पूर्ण है। ठीक उसी प्रकार भगवान एक ही है, वो है कृष्ण, परंतु अपने ज्ञान के अनुसार, जिसका बहुत कम ज्ञान है, वे कहते हैं भगवान निराकार है, ब्रह्म है, ज्योति है केवल। परंतु शास्त्र के द्वारा जो अध्ययन करते हैं और ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे जब ज्ञान होता है तब वह सोचते हैं कि भगवान केवल निराकार नहीं है, निराकार ब्रह्म नहीं है, भगवान तो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में। और जब उससे भी ज्ञान प्योरिफाइड होता है, बहुनाम जन्मनाम यंते ज्ञानवाम माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है अर्जुन, जब इस प्रकार से ध्यानी और ज्ञानी बहुनाम जन्मनाम अंते बहुत बहुत जन्मों के बाद यत्न करते हैं, वेद शास्त्रों का पठन करते हैं, तब जाकर वे इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं कि भगवान का रूप केवल निराकार नहीं है, भगवान केवल परमात्मा के रूप में नहीं है, वही जो निराकार ब्रह्म हम समझ रहे हैं, वही जो परमात्मा के रूप में है, वह भगवान वसुदेव नंदन वासुदेव के रूप में गोलोक धाम में, गोलोक वृंदावन में बहुत ही सुंदर लीला करते हैं और गोपियों के साथ रास भी खेलते हैं। भगवान का एक स्वरूप है, बहुत ही सुंदर श्याम वर्ण के हैं, द्विभुज हैं और गोप ग्वाल सखा के साथ वे लीला भी करते हैं। और इस प्रकार से भगवान का एक स्वरूप है, उनका नाम कृष्ण है और वे लीला करते हैं, वे लीला भूमि में बहुत सुंदर सुंदर लीला का प्रकट करते हैं। यह जो साक्षात्कार है यह पूर्ण साक्षात्कार है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्रह्म का साक्षात्कार निराकार का साक्षात्कार करने वाला गलत है। जिनको जो व्यक्ति यह मानता है कि भगवान निराकार है, व्यक्ति गलत नहीं है, परंतु उनका ज्ञान अपूर्ण है। गलत नहीं माना जाएगा, उनका ज्ञान अपूर्ण माना जाएगा। जो व्यक्ति कहते हैं कि भगवान केवल परमात्मा के रूप में है, वे भी गलत नहीं है, क्योंकि वास्तव में भगवान परमात्मा के रूप में भी है, परंतु यह जो ज्ञान है अपूर्ण है। पूर्ण ज्ञान यह है कि वास्तव में भगवान भगवान के रूप में अपने धाम में विराजते हैं, उनका सुंदर स्वरूप है, वही भगवान परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में है, और वही भगवान इस संसार के सभी वस्तु में ब्रह्म के रूप में है। इस प्रकार से यदि कोई जानता है तो उसका पूर्ण ज्ञान है। इसलिए कहते हैं वदन्ति तत्तत्व विदः तत्त्वम् यद् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दति। वदन्ति तत्तत्व, वदन्ति वदन्ति का अर्थ होता है कहना, बोलना। बड़े बड़े मुनि, ऋषि, वेद शास्त्र, ये सब लोग एक साथ एक स्वर से कहते हैं कि वे भगवान के तीन स्वरूप हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। भगवान तीन रूप से विराजते हैं, ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और अपने निज स्वरूप भगवान के रूप में। इस बात को भी समझना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार भगवान ब्रह्म के रूप में इस संसार के कण कण में है। तो आपने सुना होगा यह सारा संसार भगवान के शरीर से प्रकट होता है। कारणोदकशायी विष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो उनके रोम कूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, और उस समस्त ब्रह्मांडों में भगवान विष्णु विराजते हैं। इसका अर्थ है कि संसार के सभी कण कण में भगवान है, और उसे ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म के रूप में भगवान सभी वस्तु के कण में है, और वही भगवान सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। जब भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि तुम 84 लाख की योनि का सर्जन करो, तो ब्रह्मा जी ने बहुत ही सुंदर 84 लाख की योनि बना दी, और सभी आत्माओं को इस 84 लाख की योनियों में रखा गया, लेकिन फिर भी यह शरीर चलायमान नहीं हुआ। तब जाकर ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना किया, और भगवान अनेकों रूप बनाकर सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में आए, और परमात्मा के रूप में भगवान आत्मा को शक्ति प्रदान करते हैं, और तब जाकर आत्मा के द्वारा यह शरीर हिलता है। तो इस प्रकार परमात्मा के रूप में भगवान सभी के हृदय में। आप कहोगे एक भगवान होकर इतने सारे रूप से सभी के हृदय में कैसे हो सकते हैं? परंतु एक छोटा सा दृष्टांत समझिए आप। मान लीजिए एक कटोरे में पानी भरा है, ऐसे आप 100 कटोरे रख दीजिए पानी से भरे हुए, और जब सूर्य बिल्कुल ऊपर आता है तो यह सभी पानी के कटोरे में आपको 100 सूर्य दिखेंगे। यद्यपि सूर्य एक ही है, परंतु अपने प्रतिबिंब के रूप में वे 100 नहीं, वे हजारों लाखों प्रतिबिंब हो सकते हैं। ऐसे भगवान एक ही हैं, परंतु वे अलग अलग रूप में परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजते हैं, और वही भगवान अपने मूल स्वरूप में, अपने धाम में नित्य लीला करते हैं। इसलिए वास्तव में हमें केवल ये निराकार ब्रह्म के चक्कर में और यह परमात्मा के ध्यान करने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। हमें शुद्ध पूर्ण ज्ञान ग्रहण करना चाहिए कि भगवान का एक सांवला सलोना रूप है, उसका नाम है कृष्ण, और उस कृष्ण की भक्ति करना यही है जीवन का पूर्ण लाभ। उस कृष्ण की भक्ति करना, उस कृष्ण को प्रार्थना करना, उस कृष्ण को प्रणाम करना, यही है वास्तविक जीवन का लाभ। इसलिए हमारे भक्त बहुत ही सुंदर गाते हैं, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कैसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। यशो ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। राधा छाया है, अद्भुत जिनकी माया। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री लूट लूट दधि माखन खायो, बाल बाल संग धेनु चरायो। लूट 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 दधि माखन खायो, बाल बाल संग धेनु चरायो। ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम। द्रुपद सुधा की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो। द्रुपद लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद। द्रुपद सुधा की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो। जब बचायो, ग्रह से गज को फंद। ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा धाम को कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। तो कृष्ण जिनका नाम है, जिनका नाम कृष्ण है और जो गोकुल में रहते हैं, जिनकी प्रिया श्रीमती राधा रानी है, जिनकी मैया यशोदा है, जिनके बाबा नंद जी है, ऐसे भगवान कृष्ण को बारंबार प्रणाम है। वास्तव में ये है भगवान का स्वरूप। कृष्ण केवल निराकार नहीं है, केवल परमात्मा नहीं है, उनका यह स्वरूप है, यह लीला है। तो यह स्वरूप का नित्य ध्यान करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए और उस भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। हरे कृष्णा और इस प्रकार से जब भगवान के कृष्ण रूप का साक्षात्कार करेंगे तब यह पूर्ण साक्षात्कार माना जाएगा। नहीं तो हमारा भगवान के को समझना बिल्कुल अपूर्ण रह जाएगा। वास्तव में भगवान को समझने में हमारी बात तो दूर रही, बड़े बड़े लोग भी मार खा जाते हैं। रामचरितमानस में प्रारंभ में ही यह घटना है, जब एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषिपाही। एक समय की बात, जब शिवजी अपनी भार्या सती को लेकर कुंभज ऋषि के पास गए थे मलय पर्वत पर, और वहां पर कथा सुनकर जब वापस लौट रहे थे, तब उस वक्त भगवान श्री रामचंद्र इस पृथ्वी पर असुरों का भार कम करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए अवतरित हो चुके थे, और अपनी लीला काल के दरमियान रावण सीता का हरण करके लेकर गया चला गया था, और भगवान हा सीता करके उस वन में दर दर भटक रहे थे, ढूंढ रहे थे, और उसी वक्त शिवजी और सती दोनों वापस आ रहे थे। शिवजी तो रास्ते में जान गए थे, तो परम अंतर्यामी है भगवान शिवजी, जान गए थे भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हो चुके हैं और वे इसी जंगलों में घूम रहे हैं। शिवजी मन ही मन में यह सोच रहे थे कब भगवान का दर्शन होता और मैं उसको प्रणाम करता। लेकिन भगवान का बहुत बड़ा योग, अंत में शिवजी को भगवान का दर्शन हो ही गया, परंतु किस रूप में हुआ? उस वक्त भगवान श्री रामचंद्र सीता को ढूंढने के लिए सुन रे मैना सुन रे तोता मैं भी पंखों वाला होता है। सभी मनुष्यों को रास्ते में जितने लोग मिलते हैं सभी लोगों को पूछ रहे थे आपने मेरी सीता को देखा? मनुष्य की बात दूर रही, प्राणी पशुओं को, लता पता पेड़ पौधों को भी भगवान नहीं छोड़े, सबको पूछ रहे थे आपने मेरी सीता को देखा? इस प्रकार से पागलों की तरह, एक मूर्ख की तरह भगवान सबको पूछ रहे थे। वास्तव में आज का सबसे गया गुजरा पागल व्यक्ति भी एक पेड़ और पत्थर को नहीं पूछेगा आपने मेरी पत्नी का पता देखा है, परंतु भगवान यह दिखाए। और भगवान का दिखाने का आशय यही था कि यदि अपनी पत्नी की बात में फंस गए तो आगे चलकर मेरी तरह तुम सबको रोना पड़ेगा। आपने आचरित प्रभु जीवे रे सिखाए, भगवान इस संसार में बद्ध जीव को उपदेश देने के लिए यह लीला की है। नहीं तो हनुमान जी श्रीमद भागवतम के पंचम स्कंद में लिखते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र यदि चाहे तो एक सेकंड में करोड़ों सीताओं को प्रकट कर सकते हैं। उसे किसी सीता के लिए रोने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये हमें सिखाने के लिए यह लीला कर रहे थे। परंतु भगवान की ऐसी अद्भुत लीला होती है, महारानी कुंती कहती हैं कि संसार में भगवान आते हैं, लीला करते हैं, परंतु कुछ लोग जो माया में पड़े हुए होते हैं, माया जवनी काछनम या दोक्ष जम व्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्य धरो यथा। जैसे एक नट बहुत ही सुंदर फैंसी ड्रेस पहनकर स्टेज पर आता है तो पहचानने वाला भी उसे नहीं पहचान पाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान अपने धराधाम से, अपने धाम से उतरकर इस धराधाम पर आते हैं, तो जो माया में पड़े हुए लोग हैं वे भगवान को नहीं समझ सकते। और शिव जी की पत्नी सती, प्रश्न होता है क्या वे माया में थी? वे माया में नहीं थी, परंतु वे जिस कार्य के लिए गई थी, भगवान श्री रामचंद्र की कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास गई थी, तो कथा सुनते सुनते उसे झपकी आ गई। स्त्रियों का स्वाभाविक स्वभाव होता है सो जाती है, कथा में रुचि नहीं होती। तो कथा ठीक से नहीं सुनी और उसका फल हुआ कि भगवान के तत्व को नहीं समझ सकी, तत्व को नहीं जान सकी। और शिव जी ने मन ही मन, भगवान इस प्रकार से विवल हो रहे थे, भगवान शिव जी जान लिए कि ये भगवान श्री रामचंद्र इस प्रकार से लीला कर रहे हैं। शिव जी ने सोचा यदि मैं दंडवत प्रणाम करता हूं तो भगवान जिस कार्य के लिए इस संसार में आए हैं वे संपन्न नहीं होगा, क्योंकि भगवान फिलहाल नर लीला मनुष्य लीला कर रहे हैं। तो शिव जी ने मन ही मन में भगवान श्री रामचंद्र को प्रणाम किया, परंतु सती इस बात को जान गई। और बहुत ही सुंदर मानस में इसका वर्णन है कि प्रभु आप तो बहुत बुद्धिमान हो, आज आपको क्या हो गया, एक पागल लड़के को आप प्रणाम कर रहे हो। मैं जान गई आप मन ही मन इस बालक को प्रणाम किए हो, अब भगवान को पागल लड़का कहने लगी, आप इसे प्रणाम कर रहे हो जो एक अपनी तुच्छ पत्नी के खो जाने के कारण इतना दुखी होकर रो रहा है, आप इसको प्रणाम कर रहे हो। तब मान लीजिए शिव जी ने कहा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, ये साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ भगवान श्री रामचंद्र है, कृष्ण है, उनका ही ये रूप है। तब सती जी कहती हैं, ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर जाहिन जानत बेद। वे सती कहती है कि आप इसे भगवान कह रहे हो, भगवान तो ब्रह्म है, भगवान तो व्यापक है, सर्व सभी जगह पर व्यापक है, भगवान बीरज है, भगवान तो माया रहित है, ये तो माया में फंसा हुआ है, ये कहां से भगवान हो सकता है। और अज भगवान अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं होता है, और मैंने तो सुना इस बालक का जन्म दशरथ के घर पे हुआ है, ये भगवान नहीं है। और अकल अनीह अभेद, और भगवान किसी की दृष्टि में नहीं आते हैं, वे दृष्टि से अगोचर हैं, वे निराकार हैं, और अनिह भगवान इच्छा रहित भेद रहित हैं, तो ये भगवान कैसे हो सकते हैं। सती का बहुत बड़ा मोह हुआ, भगवान को नहीं समझ सकी क्योंकि माया में पड़ी फंसी हुई। तो आगे बहुत ही सुंदर कथा है, शिव जी ने कहा कि यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो परीक्षा करके देख लो। शिव जी ने कहा कि मैं इस पेड़ के इस वट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, यदि तुम्हें जानना हो तो परीक्षा करके देख कर आओ। तो शिव जी बैठे समाधि लगाकर, और सती गई भगवान की परीक्षा लेने। जो प्रभु इस संसार के अनंत कोटि जीवों की परीक्षा लेते हैं वे भगवान की परीक्षा लेने के लिए चले। और सती सोच रही थी परीक्षा पेपर कौन सा रखूं ताकि पता चले कि ये भगवान है कि नहीं। रास्ते में वो सोचते सोचते जा रही थी तो सती ने बिल्कुल हूबहू सीता जी का स्वरूप धारण कर लिया, सीता का जैसा स्वरूप धारण किया। और जिस रास्ते की ओर भगवान श्री रामचंद्र ढूंढते ढूंढते जा रहे थे, वो सामने की ओर से सती आई सीता जी का रूप लेकर। तो जैसे सीता का रूप लेकर सती आई और भगवान की दृष्टि जैसे उस सीता रूपी सती पर गई, तो भगवान ने तुरंत ही दूर से प्रणाम किया, हे माते आज अकेले क्यों यहां पर घूम रही हो? बस इतना कहते ही सती पानी पानी हो गई। सती ने सोचा सीता का स्वरूप ली हूं और ये तो बात दूर रही कि मुझे सीता नहीं जान रहे हैं, इससे तो यह भी पता चल गया कि मैं सती हूं और पूछ रहे हैं कि प्रभु कहां है। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा कि आप जब घर से चलते हो तो दोनों साथ साथ ही चलते हो, आज अकेले क्यों हो गई? ये सत्य बात है, शिवजी जब कथा कीर्तन के लिए जाते हैं तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर जाते हैं, अकेले नहीं जाते हैं। शिवजी हम सब गृहस्थों के लिए आदर्श छोड़ कर गए हैं कि भाई जब इस प्रकार से मंदिर और भजन और कथा कीर्तन में जाते हो तो साथ में लेकर आओ। और यहाँ पे शिव जी का फॉलो करने वाले बहुत कम लोग हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं माताओं से ज्यादा प्रभु लोग हैं, परंतु अकेले आए हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र ने कहा क्यों आज अकेले यहां पर? तो सती जी ने कहा कुछ नहीं, वे आगे बैठे हैं। तो इस प्रकार से सती, तो अब क्या करूं, अब धरती फट जाए तो मैं उसमें समा जाऊं, मैं भगवान की परीक्षा लेने के लिए आई। मन में बहुत संकोच, मन में बहुत अफसोस, और भगवान तो अपने रास्ते से निकल गए। यहां पर सती को अब मन में हो रहा था अब अपने पति को क्या बताऊंगी। तो सती वापस शिव जी के पास आई, शिव जी ने पूछा परीक्षा हो गई? सती ने कहा नहीं, अब मैं जा रही थी तो आपने कहा कि वे भगवान ही है, तो अब आपकी बात को मैं कैसे ठुकरा सकती हूं? मुझे विश्वास हो गया आपकी बात पर, वे निश्चित रूप से भगवान है, परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं हुई। फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि शिव जी ने अपने समाधि में स्थित होकर देखा कि वास्तव में ये कितना झूठ बोल रही है। अब देखिए, एक साधारण स्त्री की बात नहीं है, दुर्गा जी जो साक्षात पार्वती सती भगवान शिव की पत्नी, इस प्रकार से अपने पति देव से झूठ बोल सकती है, तो इस संसार की साधारण स्त्री झूठ बोले इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शिव जी जान लिए कि ये सती गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी शिव जी कुछ नहीं बोले, मन ही मन हंसकर वे दोनों आगे वृषभ के ऊपर बैठकर चल दिए। तो इस प्रकार से ये कथा है कि बड़े बड़े लोग भी भगवान को जानने में असक्षम रहते हैं। तो हम निराकार और परमात्मा कहे ये कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन हमारे निराकार कहने से भगवान निराकार हो नहीं जाते हैं। आपने देखा आगे चलकर सती को इसी भूल के कारण मरना पड़ा। तो भगवान को निराकार कहने से भगवान निराकार, भगवान का तो रूप है और चिरकाल तक बना ही रहेगा, क्योंकि सत चिर आनंद घन है। तो यहां पर शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण का तीन रूप है, ब्रह्म इति, परमात्मा इति, भगवान इति शब्द दे। अब आगे 88,000 ऋषि मुनि जिज्ञासा करेंगे, ठीक है अब हमें यह पता चल गया कि कृष्ण ही भगवान है, उसके तीन स्वरूप हैं, अब इस भगवान की प्राप्ति करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर अगले बुधवार को देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।